बोलिए सच्चिदानंद भगवान की
जय।
हरि रुद्रमरुत स्तंति दिव्येस्तवे वेदै सांग्यपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमशामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यशान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्रे भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्य व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं
सच्चिदानन्दोऽहं
शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं
शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं
शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं 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 सच्चिदानन्दोऽहं
शिवोऽहं
शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं
सच्चिदानन्दोऽहं।
बोलिए सच्चिदानन्द भगवान की। सद्घन चिद्घन आनंद घन कल्याण गुणगण निलय अव्यक्त अविनाशी जगत नियंता जगदाधार करुणा वरुणालय प्रभु की अनंत असीम अहेतु की कृपा के साथ विचार कर रहे थे कुर्म के उदाहरण के साथ। संयम पूर्वक अपनी इंद्रियों के संयम के साथ इंद्रियों को विषय से हटाकर और समबुद्धिता के साथ समग्र इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर हमें समेट लेना आना चाहिए। कछुआ अंगों को फैलाना भी जानता है और समेटना भी जानता है। जैसे मछली नदी के दोनों किनारों के बीच आती जाती हुई दोनों किनारों से तटस्थ रहती है, उसी तरह से अपनी बुद्धि को तटस्थ रूप करते हुए हमें इंद्रियों के साथ रहना भी आना चाहिए और इंद्रियों को विषयों से अलग करना भी आना चाहिए। हम विषयाशक्त हो जाते हैं, विषय में आसक्ति हो जाती है, वो बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए प्रथम बात संयम की है। संयम से चरित्र शुद्ध होगा और चरित्र शुद्ध होने पर मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होने पर बुद्धि शुद्ध होगी। इसीलिए पहली शुद्धि चरित्र की शुद्धि कही गई है, दूसरी शुद्धि मन की शुद्धि कही गई है और तीसरी शुद्धि बुद्धि की शुद्धि कही है। भगवान कहते हैं बुद्धो शरणम निवच्छ, बुद्धि की शरण लो। शरण माने आश्रय, बुद्धि का आश्रय लेकर। बुद्धि बुद्धि कब है? बोले आश्रय लेकर श्रवण करने वाली, जो श्रवण करती है उसको बुद्धि कहते हैं, जो मनन करती है, जिसमें मनन है, जिस बुद्धि में, उसे मेधा कहते हैं और जिस बुद्धि में नितिध्यासन है उसे प्रज्ञा कहते हैं। बुद्धि, मेधा और प्रज्ञा, बुद्धि का आश्रय लेकर अर्थात श्रवण से जो वृत्ति बनी वो बुद्धि है और उस पर जो मनन करती है वो मेधा है और उस वृत्ति में नितिध्यासन रूप जो समाधान को प्राप्त है ऐसी प्रज्ञा, अर्थात प्रज्ञा स्वयं स्वरूपमय है। इसीलिए भगवान कहते हैं हमें बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए। कभी किसी की बुद्धि का अपमान मत करो, निरादर मत करो। बुद्धि का आश्रय लेने के लिए पहले संयम हो। चर्चा कल रूप में मैंने की थी कि जब तक हमारा आचरण शुद्ध नहीं होगा, यम नियम के पालन से चरित्र शुद्ध होता है और चरित्र शुद्ध होने पर, जिस व्यक्ति का चरित्र शुद्ध नहीं है, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, जिसका आचरण शुद्ध नहीं, चरित्र शुद्ध नहीं, उसका वेद भी पवित्र करना चाहे, वेद भी उसको पवित्र करना चाहे तो वेद से भी वो पवित्र नहीं हो सकता। इसलिए पहली बात आचरण की है और विचार करें कि आज हमारा आचरण गिरता चला जा रहा है। दिन प्रतिदिन आचरण में राग है, द्वेष है, मात्सर्य है, घृणा है, ईर्ष्या है, इन सब से प्रेरित होकर जो हमारा आचरण हो रहा है, इससे कहां तो मन शुद्ध होगा, कहां बुद्धि शुद्ध होगी और कहा प्रज्ञा की बात बनेगी। आज बल देकर के हमें यही विचार करना है कि हमारा चरित्र अच्छा बने और चरित्र में, चरित्र को सुधारने के लिए यम और नियम बताए गए हैं। इन यम नियमों का पालन करते हुए पहली बात यम, सत्य, अहिंसा, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सत्य की बात करें, जीवन में हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्य आचरण करना चाहिए। और आप लोग सत्य के लिए बहुत सुंदर भागवत जी में भागवत के एकादश स्कंद में देवताओं ने आकर भगवान की गर्भ स्तुति की और गर्भ स्तुति करते हुए भागवत में जितनी भी स्तुतियां हैं ये समझो शरीर में जो प्राण का काम है ना वो स्तुतियां करती हैं। गर्भ स्तुति में देवताओं ने आकर भगवान की स्तुति करते हुए प्रथम बात ही कहा कि प्रभु सत्य आप सत्य स्वरूप हैं, सत्य व्रत हैं, परम सत्य हैं, सत्य को ही प्राप्त करना, सत्य से ही आप प्राप्त होते हैं। आपका अर्थात सत्य 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 कहकर भगवान को अनेक बार संबोधन किया। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान सत्य हैं, भगवान का वो परम सत्य हैं, वो त्रिकाल सत्य हैं और ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को सत्यव्रता उनका व्रत भी सत्य है और उनको प्राप्त करने का साधन भी सत्य है, वो सत्य से ही प्राप्त होते हैं और भगवान सत्य से मिलते हैं, सत्य स्वरूप हैं, सत्य व्रत हैं, कुछ न करें केवल एक व्रत ले ले कि हम जीवन में सत्य बोलेंगे। ईमानदारी से सोचो सुबह से शाम तक कितनी बार सच बोलते हो और कितनी बार झूठ बोलते हो, जरा जरा सी बात में हम असत्य का आश्रय ले लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं ये काम तो झूठ बोलने से मेरा बनेगा। यदि झूठ के लिए हमारा ऐसा विश्वास न हो कि इससे मेरा मान बचेगा, इससे मेरी रक्षा होगी, और यदि ये भरोसा हमारा असत्य के लिए न हो तो कभी कोई व्यक्ति झूठ बोलेगा? झूठ बोलने से मेरी इस बात, यहाँ झूठ बोल देंगे तो मेरी रक्षा हो जाएगी, मेरा मान सम्मान बच जाएगा, मैं अपने आप को सुरक्षित कर लूंगा, बचा लूंगा, यही समझते हैं तभी तो हम झूठ बोलते हैं ना। आचरण हमारा कैसा है, भगवान सत्य स्वरूप हैं परंतु दिन रात असत्य के अतिरिक्त और कुछ है नहीं। अहिंसा होनी चाहिए पर अहिंसा का अर्थ यही नहीं होता कि हम किसी जीव जंतु को मार डालें तो तभी अहिंसा होगी। किसी के भी अधिकार का हनन करना वो अहिंसा है, हिंसा है। हमें कभी किसी के अधिकार को का हनन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव को विधाता की सृष्टि में सबको पूर्ण रूप से जीवित रहने का अधिकार है और सबके लिए भगवान की अपनी व्यवस्था, उसे उसकी मस्ती पर रहने दो, परंतु हम उसके अपने अधिकार से हटकर जब दूसरे के अधिकार पर अतिक्रमण करते हैं। मैं थोड़े दिन पहले अखबार में, समाचार पत्र में पढ़ रही थी कि बंबई में एक तेंदुए ने आकर बड़ा आतंक कर दिया। लोग कहने लगे अब शहरों में भी शेर आने लगे। शेर शहरों में नहीं आने लगे, शहर के लोग इतने जंगलों में पहुंच गए कि शेर बिचारों, शेर तो अपनी जगह हैं, पर हम इतना उनके पास पहुंच गए कि उन्हें हमारे बीच आने के लिए मजबूर होना पड़ा। शेर नहीं आया, हम वहां तक पहुंच गए। जंगल कट कट के, जब मनुष्य जंगलों में चला जाएगा तो शेर कहाँ आएगा? तो कहने का अर्थ मेरा ये था कि हम अनधिकार पुरुषों, तो हम कहते हैं कि हमने बहुत अपने आप को विकसित किया, पर विचार करो नारायण थोड़ा सा कि हम कहाँ कहाँ, जहां जहां पर हमारे से अमर्यादाएं हो रही हैं और जहां हम अमर्यादित होते हैं वहीं हमें प्रकृति से हमारी बड़ी अपेक्षाएं रहती हैं कि बिल्कुल प्रकृति हमारे सदैव अनुकूल रहनी चाहिए, परंतु हम प्रकृति के दिन प्रतिदिन प्रतिकूल आचरण करते चले जा रहे हैं। अहिंसा, आस्ते चोरी न करना, किसी का चोरी न करें, अर्थात चोरी का मतलब यही नहीं है कि हम किसी के घर में जाकर कोई चीज चोर लेते हैं, उठा लेते हैं, वही चोरी नहीं है, अर्थात अनाज्ञा पूर्वक हम जिसको भी ग्रहण कर रहे हैं वो हमारी चोरी ही होगी। और आज चोरी की स्थिति क्या है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। ब्रह्मचर्य दिन प्रतिदिन वाणी से, मन से, शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और उससे हम हट रहे हैं, अपरिग्रही बनना चाहिए, किसी से ले करके खुश नहीं होना चाहिए, और हमारी अपेक्षाएं रहती हैं कि हमें मिलता रहे। अपरिग्रही वृत्ति में परिग्रह को ग्रहण कर इकट्ठा करने के लिए, जोड़ने के लिए हम लोग लगे रहते हैं, ये वृत्ति अच्छी नहीं है। ये यम है, नियम है, सोच सबसे बड़ी बात है, सोच और स्वाध्याय, तप, दया और ईश्वर प्रणिधान, हमें इन सब व्रतों का पालन करना चाहिए, और इसके आचरण से हमारा चरित्र अच्छा होगा। चरित्र ऊंचा पवित्र होने पर मन में पवित्रता आएगी। हम चाहते तो हैं हमारा मन शुद्ध हो जाए, हमारा मन पवित्र हो जाए, और कहा भी है मन जिनका पवित्र हो गया है, मन गंगा के जल के समान जिसका पवित्र हो गया है, मन निर्मल भया ज्यों गंगा का नीर, पाछे प्याचे हर फिरे कहत कबीर कबीर। मन पवित्र हो जाए, मन की पवित्रता चरित्र से आती है, और मन पवित्र होने पर बुद्धि शुद्ध होती है, बुद्धि पवित्र होती है, और पवित्र बुद्धि से ही श्रवण जब प्राप्त होता है, इसीलिए भगवान कहते हैं बुद्धि की शरण जाओ, क्योंकि बुद्धि में स्वयं परमेश्वर सारथी बनकर बैठे हैं। हमारी बुद्धि का सारथी परमार्थ पारायण हो, बुद्धि के संचालक स्वयमेव भगवान हैं। सारथी की बात आती है तो दो के नाम स्मरण होते हैं, एक कर्ण सारथी शाल्य और एक अर्जुन सारथी पार्थ कृष्ण, पार्थ सारथी कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, और इधर कर्ण का सारथी शाल्य हमेशा उन्हें हतोत्साहित करते हैं। जब जब कर्ण चाहता, शर्त ये रखी गई थी, क्योंकि कथा बड़ी सुंदर आती है महाभारत में, दुर्योधन के आगे कर्ण ने प्रस्ताव रखा कि मैं अर्जुन के साथ युद्ध लड़ने में सब ओर से अपने आप को सक्षम पाता हूं, यदि मुझे कहीं कोई कमी मुझे महसूस होती है तो सिर्फ एक बात की कि मेरे पास अर्जुन का जैसा सारथी नहीं। दुर्योधन ने कहा कि मैं अर्जुन का जैसा सारथी तो कहां से ला सकता हूं, पर निश्चय हुआ कि आपको अच्छा सारथी दे सकता हूं। अच्छे सारथी में कौन होंगे, बोले राजा शाल्य, और शाल्य को कहा कि ये आपके सारथी बनेंगे, महाराज साल्य को सारथी बनाने के लिए मनाना पड़ेगा। महाराज साल्य पांडवों की सहायता के लिए जब आ रहे थे धर्मराज युधिष्ठिर की सहायता करने के लिए, दुर्योधन ने अपने षड्यंत्र से जिस मार्ग से होकर वो हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र के लिए आ रहे थे उस मार्ग में इतनी सुंदर व्यवस्था कर दी कि राजा को कुरुक्षेत्र पहुंचने तक राजमहल से कहीं कोई असुविधा नहीं देखनी उठानी पड़ी। महाराज साल्य का आगमन हुआ है, उनके रहने का जो बंदोबस्त किया था और उनसे मिलने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर जाएं, उससे पहले दुर्योधन वहां पहुंच गए। दुर्योधन भी बैठे हुए थे और इतने में धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचे और पहुंच करके उन्होंने महाराज साल्य उनके मामा लगते थे और उन्होंने उनसे सहदेव के मामा थे उनको प्रणाम किया और कहा कि आपको मार्ग में बड़ी असुविधा हुई होगी, इतनी लंबी यात्रा से करके आप आए हैं। इतने में महाराज साल्य कहने लगे, महाराज आपने इतने धर्म में इतनी सुंदर व्यवस्था कर रखी थी कि मुझे कहीं रास्ते में तनिक भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा, असुविधा नहीं उठानी पड़ी। दुर्योधन कहने लगा, मामा ये सारी व्यवस्था धर्मराज युधिष्ठिर की नहीं, ये व्यवस्था तो मेरी थी आपके लिए। अर्थात इस प्रकार की व्यवस्था को देखकर अपने एहसान के अधीनस्थ दुर्योधन ने महाराज साल्य को कर लिया था। महाराज साल्य के सामने व्यवस्था थी कि उन दोनों की इच्छा जाने। अब दुर्योधन ने कहा कि मैं चाहता हूं इस युद्ध में आप मेरी सहायता करें। दुर्योधन को वो वचन दे चुके धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भले ही आपने वचन दुर्योधन को दिया है और उनके साथ रहकर उनकी मदद करने के लिए आपने वचन दिया है, तो मैं आपसे यही चाहूंगा कि मामाश्री आप अपने वचन को पूरा करें। आपके दिए हुए वचन की रक्षा होनी चाहिए, आप उस वचन को पूरा करें, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। महाराज साल्य को धर्मराज युधिष्ठिर अति प्रिय थे क्योंकि वो जानते थे पांडव धर्मात्मा हैं, न्यायप्रिय हैं। धर्मराज युधिष्ठिर की न्यायप्रियता, सत्यप्रियता, धर्मप्रियता महाराज साल्य को अति प्रिय थी, परंतु उनके पास लाचारी थी कि विवश थे, वो पांडवों की सहायता नहीं कर सकते थे क्योंकि दुर्योधन ने अपने षड्यंत्र से उन्हें अपनी ओर कर लिया था। महाराज साल्य को कर्ण का सारथी बनाने के लिए उनसे प्रार्थना की गई कि आप महाराज कर्ण के सारथी बने। महाराज साल्य ने एक बात में दुर्योधन का प्रस्ताव स्वीकार किया कि मैं कर्ण का सारथी बनना तब स्वीकार करूंगा कि जब युद्ध के बीच में वो दूसरा सारथी बदल नहीं पाएंगे। जब तक कर्ण युद्ध लड़ेंगे तब तक मैं ही उनका सारथी रहूंगा, यदि उन्हें ये बात स्वीकार है तो मुझे सारथी बनने में कोई आपत्ति नहीं है। कर्ण ने ये बात स्वीकार कर ली कि मैं इस बीच में सारथी नहीं बदलूंगा, जब तक युद्ध चलेगा तब तक केवल महाराज साल्य ही कर्ण के सारथी रहेंगे। अब सारथी बनकर जैसे कर्ण का रथ युद्ध के लिए युद्ध में रथ ले चलने के लिए आज्ञा दी, साल्य कहने लगे, जैसे उनका रथ कहते हैं कि मुझे अर्जुन के सामने मेरा रथ ले चलो, तो साल्य मन ही मन तो पांडवों को चाहते थे और खोटे खोटे शब्द बोलकर कर्ण को युद्ध से विचलित करते रहते। तुम सूत पुत्र हो, तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम्हारे अंदर वो बल कहां कि तुम
गांडीव धनुर्धारी प्रथासुत पांडुपुत्र अर्जुन के सामने तुम युद्ध में खड़े हो सको। और इस प्रकार अर्जुन की प्रशंसा करते हैं और दुर्योधन को सदैव खोटे शब्द कहकर उन्हें युद्ध से उनकी वृत्ति को विचलित करते रहते हैं। और उनके खोटे शब्दों को सुनकर, दुर्वचनों को सुनकर कर्ण इतने विचलित हो जाते हैं कि उनकी ये युद्ध में एकाग्रता भंग हो जाती। परिणाम यही निकला कि इस युद्ध में बार बार हतोत्साहित होते हुए कर्ण युद्ध हार गए और अर्जुन युद्ध जीत गए, क्योंकि अर्जुन का सारथी हमेशा अर्जुन के लिए, अर्जुन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करते रहते, उत्साहित करते रहते। पार्थ को यही उपदेश देते कि देखो ये सब जो तुम्हारे सामने युद्ध लड़ने के लिए खड़े हैं, ये तो पहले ही इस युद्ध में मरे हुए हैं। ये तो केवल तुम्हें श्रेय दिया जा रहा है, तुम तो केवल इसके निमित्त मात्र हो, इनका मरना निश्चित है। न यहाँ मरने वाला सत्य है न मारने वाला सत्य है, सत्य तो केवल आत्मा है। इसलिए तुम युद्ध को लड़ो। भगवान बार बार कहते हैं अर्जुन, तस्मात् सर्व काले शुमामे विदश्च, तुम सर्व काल में मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। उन्हें युद्ध के लिए बार बार प्रेरित करते, तस्मात् योगाद् युद्धस्य योगम योग कर्मसु कौशलम। भगवान कहते हैं युद्ध के लिए उद्योग करो, बार बार प्रोत्साहित कर रहे हैं। और कर्ण को उतना ही हतोत्साहित किया जा रहा है, उनको निराश किया जा रहा है। तो याद रखे नारायण, सारथी बनकर हमारी बुद्धि में कौन बैठा है? हमारी बुद्धि हमें हतोत्साहित कर रही है या उत्साहित कर रही है? वो बुद्धि हतोत्साहित हो जाती है, ये तो बड़ा कठिन काम है भगवत प्राप्त करना, स्वस्वरूप को प्राप्त करना। हमारा काम थोड़ी है, हम थोड़ी कर सकते हैं, हम तो सामान्य व्यक्ति हैं। हम नाना प्रकार के अपने आप अपने से विचलित करना, ये बुद्धि का अच्छा कार्य नहीं है। इसलिए बुद्धि हमेशा कैसी होनी चाहिए? बोले कर्ण के सारथी जैसी नहीं, अर्जुन के सारथी जैसी। अर्थात बुद्धि में भगवान को बिठाकर ये बुद्धि परमार्थ की ओर चले, परमार्थ पारण बने, परमार्थ विचारने में कुशल बने। उसके लिए हमें विचार करना चाहिए। और वो बुद्धि प्राप्त कब होती है? बोले जब संयम के द्वारा मन शुद्ध होता है। मन शुद्धि के बिना बुद्धि की शुद्धि नहीं हो सकती। आप कितना ही चाहें कि मेरी बुद्धि पवित्र और शुद्ध बनी रहे, कुशल बनी रहे, बुद्धि की मैं निपुणता को प्राप्त करूं, पर हमारा यदि मन शुद्ध नहीं है, आचरण शुद्ध नहीं है, तो वो बुद्धि परमार्थ विचार लायक नहीं बन सकती। भले उस बुद्धि से हम संसारिक सफलता को प्राप्त कर लें, संसारिक भोगों को प्राप्त कर लें, परंतु वो उस बुद्धि का उपयोग नहीं होगा, वो तो केवल दुरुपयोग ही होगा। भगवान की दी हुई बुद्धि का हमें सदुपयोग करना चाहिए। इस बुद्धि का सदुपयोग क्या? सही उपयोग। सही उपयोग धन कमाने में नहीं है, भोग इकट्ठा करने में नहीं है। अर्थात इन्हें तो आप अनाशक्त भाव से, क्योंकि ये एक साधन है, परंतु बुद्धि का सही सदुपयोग तो है परमार्थ स्वरूप आत्मा के पहचानने में, स्वस्वरूप आत्मा को पहचानने में बुद्धि लगे, ये बुद्धि का सही सुपयोग होगा, हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। भगवान आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र अपने पावन गीता के उपदेश के द्वारा हमें यही बताना चाहते हैं कि कर्म करते हुए, अनाशक्ति पूर्वक कर्म करते हुए, आसक्त भाव से नहीं अनाशक्त भाव से कर्म करें, और अनाशक्त भाव से कर्म करते हुए संयम के साथ इंद्रियों को आसक्ति से छुड़ाकर, विषयों में जो इंद्रियां दिन रात आसक्त हो रही हैं, उससे अपनी इंद्रियों को अनाशक्त करते हुए कुर्म अंग नियो कछुए के समान अपनी इंद्रियों को समेटकर अपने वश में करते हुए बुद्धि के द्वारा, स्थिर बुद्धि के द्वारा स्वस्वरूप आत्मा का विचार करें, आत्म तत्व को समझें, जिसके लिए हमें भगवान ने ये मनुष्य जीवन दिया है। ये बात मैं कई बार कहती हूँ कि ये जीवन मिलना कोई बार बार बच्चों का जैसा खेल नहीं है। बहुत बड़ी कृपा ईश्वर ने की, कपहू की करुणा निधि करुणा कर देही देत ईस अहेतु सनेही। भगवान ने बड़ी हमारे पर कृपा की, हमें ये मनुष्य शरीर दिया, और ये शरीर पाकर के अब ये शरीर दिन प्रतिदिन ये साधन कमजोर होता चला जा रहा है, और इस जीवन में विचारने जैसी वस्तु हम विचार पाए हैं या नहीं, जिसे हमें प्राप्त करना था वो हम प्राप्त कर पाए या नहीं, अर्थात हम अपने लक्ष्य को जान पाए पहचान पाए हैं या नहीं, हमें इसके लिए विचार करो। और नहीं कर पाए हैं तो अब से इसी वक्त से समय निकालकर सब ओर से, क्योंकि थोड़ा सा समय भी, भागवत में कथा आती है महाराज खड्गवांग की, सूर्यवंशी महाप्रतापी राजा हुए राजा खड्गवांग, उन्होंने बहुत समय तक असुरों के साथ युद्ध किया और देवताओं को इस युद्ध का परिणाम में प्राप्त होने वाला है, थोड़े एक मुहूर्त भर और युद्ध में डटे रहें, खड़े रहें, ऐसे ही लड़ते रहें, तो अब तक का युद्ध का परिणाम जीत उन्हें हासिल होने वाली है। यकायक महाराज खड्गवांग को का ध्यान अपने ऊपर आया और उन्होंने युद्ध रोक दिया। देवता लोग कह रहे, महाराज रोकिए नहीं, रोकिए नहीं, आप युद्ध लड़िए लड़िए, अब आपको इसे मुहूर्त भर में इसका परिणाम मिलने वाला है। महाराज खड्गवांग कितना देवताओं के कहने पर भी वो युद्ध उन्होंने आगे बढ़ाया नहीं, वो वहीं रुक गए और देवताओं से कहने लगे कि मैं युद्ध को और आगे लड़ूं, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब मेरी आयु कितनी है। राजा खड्गवांग को देवताओं ने कहा, महाराज एक मुहूर्त भर की आयु आपकी बाकी है, एक मुहूर्त भर की आयु में आपको बड़ी भारी जीत मिलने वाली है। महाराज खड्गवांग ने सोचा, इस जीत के सामने मैं अपने जीवन की जीत हार जाऊंगा। महाराज खड्गवांग ने उसी समय इतनी भारी जीत को प्राप्त जो होने वाली थी विजय उनकी, उसे उस युद्ध को छोड़ करके अपनी वृत्ति को उसी क्षण अंतर्मुख कर लिया और भीतर लौट आए, भीतर स्वस्वरूप में स्थित हो गए, अपने अंदर अपने मन को स्थिर करके, अपने चित्त को स्थिर करते हुए उन्होंने अपनी वृत्ति भगवान के साथ एकाकार कर ली, जोड़ ली, और मुहूर्त भर में महाराज खड्गवांग ने वो पद प्राप्त किया जो बड़े बड़े ऋषि और मुनियों के लिए भी दुर्लभ था, परम भागवती गति, परम परमात्मा में वो स्थान प्राप्त कर गए, राजा खड्गवांग को पुराणों में स्थान मिल गया। भागवत उनका यशोगान करने लगे, भक्त उनका यशोगान करने लगे। केवल एक मुहूर्त भर के लिए अपने मन को भगवान में, अपने चित्त को भगवान में लगाकर, तो विचार करें कि जीवन में इतना समय हमारा निकल चुका है। सांसारिक परिणाम हमें जो भी प्राप्त हुआ हो, उस परिणाम के आगे भले ही वो सफलता असफलता, जो भी हमें सांसारिक परिणाम हमें प्राप्त हुआ हो, उस परिणाम की अपेक्षा जो हमारे अंतर का भीतर का परिणाम है, वो भीतरी फल वो सबसे महान फल होगा। यदि उस आत्म तत्व को समझे बिना स्वस्वरूप आत्मा में भगवदाकार वृत्ति हुए बिना इस संसार से चले गए, तो फिर हमारे लिए वो अंधकूप तैयार हो, असुरिया नामते लोका अंधेन तमसावृता, वो अंधकार से आच्छादित लोक और उन अंधकार में अनेका अनेक यातनाएं हमें भोगने के लिए विवश होना पड़ेगा। इसलिए अब तो कम से कम हमें उस अंधकार में न जाना पड़े, जहां अंधेरा ढका हुआ है उस अंधकार से हम प्रकाश की ओर को पा सकें, क्योंकि हमारे जीवन की चाह केवल प्रकाश को पाने की रही है, अंधकार को पाने की नहीं। प्रथम दिन मैंने चर्चा की थी कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकाश प्रिय है, अंधकार किसी को प्रिय नहीं। हमारी चाह तो प्रकाश की ही रही है, क्योंकि हम प्रकाश के अंश हैं। अंश की अंशी की चाह बनना एक स्वाभाविक है। इसलिए प्रकाश को पाने के लिए उस आत्म प्रकाश आत्म ज्योति, जिस आत्म ज्योति आत्म प्रकाश में जो सब कार्य होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि एकाएक बिजली चली जाती है, दिन में हम सूर्य के प्रकाश से काम लेते हैं, रात्रि में चंद्रमा और बिजली के प्रकाश से काम लेते हैं, कभी कभी बिजली चली जाती है, घोर अंधकार हो जाता है, और अंधकार में भी उस अंधेरे में भी उठ करके आप कुछ खोजने के लिए चल पड़ते हैं कि मोमबत्ती ले लें, दिया सलाई ले लें, मोमबत्ती जलाकर रोशनी करें, लैंप जलाकर रोशनी करें, आप लैंप ढूंढने के लिए मोमबत्ती ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। आपसे पूछा जाए अंधेरा है, इस अंधेरे में तुम जो रोशनी को लेने के लिए, मोमबत्ती को लेने के लिए, दिया सलाई को लेने के लिए चले हो, तो इस अंधेरे में कैसे खोजोगे? तो उस समय व्यक्ति का जवाब होता है कि मुझे ऐसा ध्यान है। वो अपने अंदर कौन से प्रकाश में खोजने के लिए आगे बढ़ता है, उस प्रकाश का नाम है आत्म प्रकाश। स्वयं अपनी आत्मा के प्रकाश में खोजना आरंभ करता है। जहां कोई और प्रकाश नहीं दिखता, वहां केवल आत्म प्रकाश दिखता है। उस आत्मा का जो ऐसा प्रकाश है, उस प्रकाश स्वरूप आत्मा में हमारी स्थिरता बने, उस आत्मा को हम समझें, उसमें स्थिर हों, और इस स्थिरता का जो परिणाम है वो हमें प्राप्त हो सके, हम एक परिणाम तक इसी जीवन में पहुंच सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें अपने आप के लिए ईमानदारी बरतने की आवश्यकता है, ईमानदारी से अपने साथ न्याय करें। अपने साथ न्याय यही करें कि अपने आप के लिए हम थोड़ा गंभीर होएं। जो कुछ हम कर रहे हैं अच्छी बात है कि जो किया अच्छा करना चाहिए, शरीर के लिए किया, इंद्रियों से जगत के लिए किया, पर जो करना था जिसके लिए जो करने के लिए परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया था वो हम कर पाए या नहीं कर पाए, करना तो यही था अपने आप से परिचय, अब से अपने आप से मिलने का जो मौका हमें ईश्वर ने दिया था, अपने को पहचानने का, अपने को समझने का, अपने को पाने का, अपने को जानने का ईश्वर ने हमें ये अवसर दिया था, जो समय हमें मिला था, चाहे वो 10 साल का, 10, 20, 50, 60, 70, 100 साल तक का जो समय किसको कितना मिला, किसको कितना मिला, उतने समय के अंतर्गत उसे अपने आप से मिल लेना है, अपने आप को समझ लेना है। यदि उस अब तक नहीं समझ सके तो कोई बात नहीं, राजा खड्गवांग का उदाहरण अपने सामने रखते हुए हम अब से इसी वक्त से ये निश्चय करें कि हम अपने आप में अपने आचरण को सही करते हुए, अब से हम वासना से प्रेरित होकर, राग से प्रेरित होकर कार्य नहीं करेंगे, राग से प्रेरित होकर नहीं करेंगे, हम प्रेम से प्रेरित होकर करेंगे, हम ईर्ष्या से प्रेरित होकर नहीं करेंगे, द्वेष से प्रेरित होकर नहीं करेंगे, हम केवल कर्म कर्म के लिए करेंगे। कर्म कर्म के लिए करते हुए निष्काम भाव से सकामता को छोड़कर, सकाम कर्म को छोड़कर निष्काम आचरण के द्वारा, फलाशक्ति को छोड़कर फल में आसक्त हुए बिना अनाशक्ति पूर्वक कर्म करते हुए हम अपनी बुद्धि को अब सम रखते हुए सफलता में असफलता में दोनों को एक समान छोड़ समझते हुए, अच्छे में और बुरे में दोनों को अलग अलग न समझते हुए और दोनों को समान जानते हुए अपनी बुद्धि को तटस्थ रखते करेंगे और बुद्धि स्थिर रखकर हम अपने स्वरूप में स्थित होंगे, ऐसा निश्चय करके जब आप चलेंगे तो निश्चित रूप से बात बनेगी नारायण। तो भगवान कहते हैं बुद्धो शरणम निवच्छ कृपणः फल हेतवे, केवल बुद्धि की शरण जाकर, ये बात मनुष्य के लिए कही गई है नारायण। ये जो बुद्धि है, यूं तो परमात्मा ने बुद्धि मैं उस सभी को दिए, पर मनुष्य की बुद्धि एक विशेष प्रकार की बुद्धि है, जिस विवेक बुद्धि के द्वारा सत्य सत्य सत्यासत्य, सत्य क्या है और असत्य क्या है, इस विचार से उत्पन्न जो शुद्ध सात्विक बुद्धि है उसका आश्रय लेकर, सत्य और असत्य, सार और असार, नित्य और अनित्य के विचार से उत्पन्न जो बुद्धि है, उस बुद्धि का आश्रय ग्रहण करके, सहारा लेकर, आश्रय लेना माने बुद्धि में भगवदा आश्रय लेना, बुद्धि के द्वारा भगवान का आश्रय, भगवान पर भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए। पर बात तो भरोसे और विश्वास की है। एक भक्त चलते चलते उसका पांव फिसला और जाकर के वो व्यक्ति खाई में गिर पड़ा। खाई में गिरते गिरते उसके हाथ में एक पेड़ की टहनी आ गई और उस टहनी के साथ वो झूल रहा है और जानता है कि ये टहनी जिसे मैंने पकड़ा हुआ है कि थोड़ी देर बाद ये टहनी मेरे हाथ से छूट जाएगी, क्योंकि टहनी पकड़कर वो कितनी देर तक लटक सकता है और लटकता हुआ व्यक्ति हाथ से टहनी छूटेगी और नीचे और गहरी खाई में जाकर गिर पड़ेगा। ऐसे समय पर वो अंदर से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे बचा लो, सहारा ढूंढ रहा है। आवाज आई, तुम ये हाथ की टहनी छोड़ दो, तुम्हें मैं बचा लूंगा, टहनी छोड़ दो, छोड़ दो इस सैनी को, आवाज आ रही है छोड़ दो इस सैनी को, तो क्या वो व्यक्ति जब तक उसमें सामर्थ है तब तक उस टहनी को छोड़ सकेगा? वो टहनी नहीं छूटती उससे वो टहनी नहीं, आवाज आ रही है कि तुम्हें मैं बचा लूंगा छोड़ दो उसे, पर उससे वो टहनी छूटती नहीं है। बात तो यहां आकर हो गई, हमसे छूटती नहीं है वो विश्वास, वो भरोसा जो हमें भगवान पर होना चाहिए वो नहीं होता है। कहते जरूर हैं कि हमें तो बड़ा भरोसा है, बड़ा भारी भरोसा है, बड़ा भारी विश्वास है, पर जो विश्वास होना चाहिए, जो भरोसा हमें भगवान पर होना चाहिए वो नहीं होता है ना। यदि भगवान का आश्रय हो गया होता, आश्रय माने भरोसा, भगवान का भरोसा हो गया होता तो बात बन गई होती नारायण। जिन्होंने उन पर भरोसा रखा, जिसने अपनी बुद्धि को भगवदाश्रय भगवान के भरोसे में स्थिर कर लिया, सम कर लिया है, उनकी बात बन गई। ऐसा भरोसा बुद्धि में आता नहीं है, ऐसा विश्वास आता नहीं है, और इसी के कारण हम संसार में भटकते रहते हैं। कहते सुनते संतों की जरूर है, सुनते शास्त्र की जरूर है, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि निश्चयात्मक बुद्धि, बात तो केवल निश्चय की है ना। जिसका निश्चय हो गया है, निश्चयात्मक बुद्धि, एक निर्णयात्मक बुद्धि, भरोसा क्या है? निर्णय है, निश्चय है, और हमारे निर्णय की कमी है, हमारे निश्चय की कमी है। कैसा दृढ़ निश्चय है, कई बार मैं ये उदाहरण देती हूँ, बड़ी जोर की भूख लगी है, भोजन सामने परोसा हुआ है, और भोजन सामने थाली में परोस कर रखा हुआ है, भूख भी लगी है, कमी न भोजन में है, कमी न भूख में है, और जैसे भूखा व्यक्ति भोजन की ओर खिंचता है, भोजन करने के लिए तैयार हुए थे, इतने में किसी ने आके कहा शायद इस भोजन में जहर मिला हुआ है, शायद, केवल एक शंका ही रखी, स्पष्ट कुछ नहीं हुआ, साफ कुछ नहीं हुआ, पर इस शंका के आने के साथ ही आप उस भोजन को छोड़ देंगे। उस भोजन को छोड़ने का आपके मन में कोई मलाल भी नहीं होगा, दुख भी नहीं होगा, भूख कितनी लगी है फिर भी आप खाने को तैयार नहीं होंगे, और वो भोजन आपको आकर्षित नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा? क्योंकि आपके अंदर विष के लिए निश्चय पक्का है, आपके भीतर विष के लिए निश्चय पक्का है, दृढ़ है, एक निर्णय है आपके अंदर कि विष के खाने से शरीर की हानि होती है, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है, इसलिए वो भोजन भी आपको आकर्षित नहीं करेगा, और उस भोजन को छोड़ने का भी आपको कोई दुख मलाल नहीं होगा। कितना ही बढ़िया बढ़िया मेवा मिष्ठान पकवान क्यों न हो, आपको उस भोजन को छोड़ने का दुख नहीं होगा। वो भोजन आपको आपके जीव में पानी नहीं ला सकेगा, ललचा नहीं सकेगा। बोले क्यों? क्योंकि निश्चय पक्का है। उसी तरह से यदि आपके अंदर परमात्मा के लिए निश्चय पक्का हो जाए तो ये संसार के भोग आपको लुभा नहीं सकेंगे, और संसार के भोगों के लिए आप आकर्षित नहीं हो सकेंगे, न संसार के भोगों में आकर्षण रहेगा, और न आप संसार के भोगों के लिए आकर्षित होंगे, उन्हें छोड़ने का आपको कोई तकलीफ होगी, कोई आपको आभास होगा, ये दोनों बातें आप में नहीं होंगी। यदि आपके अंदर परमात्मा के लिए एक निश्चय हो गया हो, निर्णय हो गया, निष्कर्ष पे, एक निर्णय पर आप पहुंच गए हैं, परंतु आपका निर्णय तो है, कोई कहता है, कोई कहता है नहीं, जब प्रेमपुरी में सुबह आते हो तब तो लगता है कि जो यहाँ महात्मा कहते हैं यही सही है, और प्रेमपुरी के गेट से बाहर गए दुनिया जब दिखती है तो लगता है जो ये व्यवहार कर रहे हैं यही सही है। आपका अपना जो निर्णय है, निर्णय करना तो आपकी बात है ना, निर्णय आपकी बुद्धि का काम आएगा। जब तक स्वयं की बुद्धि से आपका एक निर्णय एक निश्चय नहीं होगा तब तक फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। नारायण, एक निश्चय एक निर्णय तो आपको ही करना है। उसके लिए बेटा निर्णय कर देगा और पिता को लाभ मिल जाएगा, पिता निर्णय कर लेगा पुत्र को लाभ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जिसको भूख लगी है वही भोजन करे तो उसकी क्षुधा शांत होती है, जिसे प्यास लगी है वही जल पिए तो उसकी प्यास तृष्णा शांत होती है। प्यास किसी को लगी हो पानी कोई पी दे, भूख किसी को लगी हो भोजन कोई कर दे तो इससे भूख और प्यास तो शांत नहीं होती है नारायण। उसी प्रकार मेरे निर्णय से आपका आपकी बात नहीं बनेगी, आपके निर्णय से मेरी बात नहीं बनेगी, परंतु जिन संतों का ये निर्णय रहा है, जो शास्त्र का निश्चय रहा है, उस निश्चय और निर्णय पर आपको अपने निर्णय की मुहर लगानी होगी, वो तब संभव होगा। इसीलिए बार बार शास्त्र और संत के संग की आवश्यकता पड़ती है, स्वाध्याय की आवश्यकता पड़ती है, ताकि आप स्वाध्याय से सत्संग से धीरे धीरे आपकी वृत्ति उस निश्चय के साथ अपने निर्णय को में एकाग्र होती जाए। जैसे एक बालक एक ड्रामा पार्टी में काम करता था, उस बालक का नाम था सुदर्शन। सुदर्शन नामक एक बालक ड्रामा में उसे काम करने को दिया गया कि तुम एक स्त्री का अभिनय करोगे और स्त्री के रूप में तुम्हें अभिनय करना है। स्त्री का अभिनय करने के लिए उसे 6 महीने से 7 महीने से साल से अपने इस अभिनय की तैयारी करनी पड़ी। अभिनय की तैयारी में उसे यही करना था कि स्त्री के समान उसकी भाषा मधुर हो, उसकी चाल कोमल हो और उसकी उसको अपने आप में धीरे धीरे स्त्री के जैसे आचरण को करने लगा, उसका अभ्यास करता गया और दिन रात के अभ्यास के साथ कड़ी मेहनत के साथ जब उसने अभिनय के मंच में अभिनय प्रस्तुत किया तो वो अभिनय इतना अच्छा किया कि देखने वालों ने उसकी वाह 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 कर बड़ी तारीफ की। और जब ये तारीफ और प्रशंसा उसे मिली वाह 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 सुनते सुनते वो इतना भ्रमित हो गया कि वो स्वयं को स्त्री ही समझने लगा। अब तो उसकी सब चेष्टाएं वो भूल गया कि मैं एक बालक हूं पुरुष हूं, वो अपने को स्त्री समझने लगा। माता पिता को बड़ी चिंता हुई, स्वजन संबंधियों को बड़ी चिंता हुई, हमारे बालक का दिमाग फिर गया है, ये अपने को लड़के ही समझता है, और बड़ी चिंता में किसी तरह इसका उपचार हो उपाय हो, कोई औषधि हो कोई मंत्र हो कोई मणि हो कुछ नग पहना दिया जाए, मंत्र मणि औषधि कुछ इसे दी जाए जिससे इसका सुधार हो जाए, परंतु कोई काम नहीं आए। परिणाम ये हुआ कि एक संत का आगमन हुआ, माता पिता ने अपनी व्यथा संत को सुनाई, महात्मा ने कहा कि तुम्हारा लड़का ठीक हो सकता है, वो बिल्कुल ठीक हो सकता है, परंतु उसे ठीक करने में समय लगेगा। महात्मा रोज सुबह सुबह साल भर तक महात्मा ने कहा कि मुझे यहाँ रहना होगा, साल भर तक रहे और रोज सवेरे उसके घर में आते, जलपान करते बैठते, और जब जलपान करते बैठते तो रोज रोज महात्मा के घर में आते बैठते देखकर धीरे धीरे ये बालक भी उनके पास आकर बैठने लगा, और बैठते बैठते धीरे 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 संग में बैठते बैठते महात्मा ने उसे कुछ नहीं कहा, वो पास में आकर बैठता रहा, बात करता रहा, सुनते रहे और उसको देखते रहे, और धीरे 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 उस बालक की एकाग्रता उस महात्मा में बढ़ने लगी। जैसे जैसे महात्मा में एकाग्रता बढ़ने लगी, कुमात्मा की बात को बालक ध्यान से सुनने लगा कुछ कुछ। तो एक दिन महात्मा ने देखा कि अब पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है, तो महात्मा ने उसके आगे स्त्री और पुरुष के लक्षणों को भेद करके अलग अलग करके बताने लगे। पुरुष के लक्षण जब स्त्री के लक्षण एक एक करके बताए और उससे पूछा कि स्त्री का ये लक्षण तुम में है, ऐसा लक्षण है तुम वो तुम्हारे में वो लक्षण है, तो वो उन लक्षणों को स्त्री के लक्षणों को नकारने लगा, और नकारते हुए जब पुरुष के लक्षण बताने लगे तो पुरुष के लक्षण बताते हुए उन लक्षणों को अपने आप में स्वीकारने लगा। जब पूर्ण रूप से पूर्ण पुरुष के लक्षण उस बालक ने अपने आप में पाए तो वो एक सहसा बोल उठा, मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ। तो क्या जिस समय वो स्त्री समझ रहा था उस समय पुरुष नहीं था? पुरुष तो वो उस समय भी था, परंतु उसकी बुद्धि में एक भ्रांति हो गई। और जब वो अपने को ये समझ रहा है कि अब मैं पुरुष हो गया हूँ, क्या वो तभी पुरुष हुआ? पुरुषत्व तो उसका ज्यों का त्यों उसमें था, पहले उसे भ्रांति हो गई थी और अब वो भ्रांति टूट गई है, खत्म हो गई है। और भ्रांति टूटने पर, भ्रांति भंग होने पर वो कह उठा कि मैं पुरुष हूँ। तो केवल मात्र हमारी बुद्धि में एक भ्रांति पड़ गई है, बहुत समय से ये जो भ्रांति हो गई है, जो हम हैं उसे भूल गए हैं, और जो नहीं है वो हमने अपने को समझ लिया है। ऐसी जो भ्रांति बुद्धि में आई है, इस भ्रांति को, इस भेद भ्रांति को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा? बोले सत्संग करना हो। धीरे धीरे आप ज्यों ज्यों आप लक्षण से अपने आप में, अपनी बुद्धि में पूर्ण निर्णय को प्राप्त करेंगे, तो पूर्ण निर्णय के साथ आप कह उठेंगे, अहम ब्रह्मास्मि, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम।